आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनविता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का पार्ट 3। तो आपको पता है आपकी पुस्तक का ये पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी हम पढ़ रहे थे, जिसकी लेखिका है मधुका करिया जी। इसमें अभी तक हमने कितना पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, कि जो मधु काकरिया जी हैं वो अपनी यात्रा की कहानी लिख रही हैं, यानी ये विधा क्या बन जाती है, यात्रा वृत्तांत। विधाएं जैसे हिंदी में जो हम अलग अलग चीजें लिखते हैं ना, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, ये सारी क्या होती है, विधाएं। वैसे ही एक विधा होती है यात्रा वृत्तांत, यानी अपनी यात्रा के अनुभवों को, उसकी कुछ कहानियों को लिखना। तो ये यात्रा जो मधु काकरिया जी ने की है वो है सिक्किम राज्य के गंगटोक से हिमालय की पहाड़ियों की तरफ। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लेखिका वहां पे जाती हैं और कंचनजुंगा पहाड़ी को देखना चाहती हैं, लेकिन बालकनी से देख नहीं पाती हैं। रास्ते भर की खूबसूरत नजारों के उन्होंने वर्णन किया है, साथ ही यह भी बताया है कि जो पहाड़ पे रहने वाले लोग हैं वो कितने मेहनती हैं। एक तरफ वहां का जीवन प्राकृतिक सौंदर्य से, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, तो दूसरी ओर जीवन की कुछ अभाव, कुछ कमियां उन्हें पूरी तरह खुश नहीं होने देती। वो मेहनत कर करके कमियों में अपना जीवन बिता बिता के रहते हैं। तो ये सुंदरता और दर्द का मिश्रण हम इस यात्रा वृत्तांत में पढ़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ था, जो लेखिका है वो यूमथोंग की तरफ निकलती है, यानी हिमालय की घाटियों की तरफ, और उनका जो ड्राइवर है, ड्राइवर भी है वो उनका गाइड भी है, जितेन नारगे उसका नाम है, वो उन्हें वहां के नजारों के बारे में बताता हुआ जाता है, वहां जगह की जानकारी देता जाता है, हर जगह के किस्से सुनाता जाता है कि यहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, ये फूल ऐसे हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे करते। जब वो हिमालय की तरफ पहुंच जाती हैं, लगभग हिमालय के पास, तो वहां वो कहती हैं कि अब वीरान हो गए हैं रास्ते, यानी रास्ते सुनसान हो गए हैं, लोग या लोगों की बस्तियां अब नहीं दिख रही हैं, और वो पहाड़ जो दूर से बहुत छोटे लग रहे थे सामने अपने विराट रूप में, बहुत ही विशाल या बड़े रूप में सामने दिखाई दे रहे थे, और पतले से रास्ते से उनकी जो गाड़ी है वो हिचकोले खाते हुए, यानी जैसे धक्के लगते हैं ना जीप को, ऊपर नीचे होती है जीप, झटके लगते हैं, उसे कहते हैं हिचकोले खाते हुए वो आगे बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब आज हम आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 20 पे आ जाइए। हम लोगों को पेज नंबर 20 से शुरू करना था, तो मैं पढ़ती हूँ। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, है ना, ये गाना आप लोगों ने भी सुना होगा। तो वहां जो भी सैलानी, यानी जो घूमने गए हुए थे वहां पे, वो लोग मिलकर क्या गाने लगते हैं, वहां के इतनी सुंदर पहाड़ियों को देख के, बर्फ को देख के, जो खूबसूरती पूरे मौसम में, नजारे में यहाँ वहां बिखरी हुई थी, उसको देखकर सबका मन बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग गाना गाने लगते हैं कि सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी, मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। तो लेखिका क्या बता रही हैं कि सब गा रहे थे, सब मस्ती में थे, लेकिन लेखिका जो थी वो शांत थी। कैसे, जैसे पहले कोई ऋषि मुनि अपनी तपस्या में बैठ जाते थे और शांत हो जाते थे ना, ठीक उसी तरह लेखिका भी शांत थी। उनके भीतर कुछ जम सा गया था, जब होता है ना हम एकदम अंदर जम जाते हैं, बस उस चीज को देखते रहते हैं, उस चीज में खो जाते हैं, तो हमें वैसा ही हाल लेखिका का हो गया था। वो चाह रही थी कि जो सारा परिदृश्य, जो नजारा, जो उन्हें दृश्य दिख रहा है, उसको वो अपने अंदर भर ले, एक भी पल यहाँ वहां नजर ना हो जाए, कुछ भी वो गवा ना दे, सब कुछ अपने अंदर भर ले। और फिर उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर बूंद बूंद कुछ पिघल रहा है ना, यानी कि हल्की हल्की चेतना लौट रही है, जो वो खो गई थी वो वापस अब होश में आ रही है। जीप की खिड़की से मुंडकी, मुंडकी यानी मुंडी या सर हम कहते ना, तो सर निकाल के जैसे बच्चे देखते हैं ना, वो वैसे बार बार जीप की खिड़की से सर निकाल के देख रही थी कि क्या देखती थी, कि कभी लगता था जैसे पर्वत जो है वो आसमान को छू रहे हैं, तो कभी जो झरने बहते थे या जलप्रपात बहते थे वो लगता था कि जैसे दूध की धार बरस रही हो। ऐसे ही नजारों को देखते हुए वो बार बार अपने आप को रोक नहीं पा रही थी और बच्चों की तरह खिड़की की जीप की खिड़की से झांकने लग रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ यह तिस्ता नदी थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। क्या कह रही हैं, जहां उन्हें एक तरफ पर्वत देखनी है, झरने देखनी है, वहां दूसरी तरफ क्या दिख रहा है उन्हें, गुलाबी पत्थर जो कि बहुत चिकने हैं। ऐसे चिकने पत्थरों के बीच में से एक नदी बह रही है जिसका पानी इतना सफेद है कि वो चांदी की तरह लग रही है ना। इटला कर बहती हुई यानी अदाओं के साथ नजाकत के साथ बहती हुई नदी दिख रही है जो कि चांदी की नदी लग रही है क्योंकि बहुत ही सफेद पानी है। और उस नदी का क्या नाम है बच्चों, तिस्ता नदी। ठीक है, तिस्ता नदी क्या कह रही है, जब वो सिलीगुड़ी से चले थे तो वहीं से तिस्ता नदी उनके साथ थी, और लेकिन यहां आकर उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर, क्योंकि हिमालय से ही तिस्ता नदी निकलती है तो ये उसका ओरिजिन पॉइंट था जहां से वो शुरू होती है ना। तो यहाँ पे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पूरे उफान पर है, पूरी स्वच्छता है उसमें, सुंदरता के साथ साथ स्वच्छता भी है, साफ है वो। लेकिन जब वो राज्यों से शहरों से होती गुजरती है सिलीगुड़ी तक पहुंचती है तो वहां पे लेखिका ने उसे देखा जहां वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, खूबसूरत वहां पे भी थी लेकिन इतनी नहीं थी जो हिमालय के पास लग रही है। वो कह रही है कि इतनी खूबसूरत नदी उन्होंने पहली बार देखी, इसीलिए वो रोमांचित हो गई, अंदर से उत्साहित हो गई, खुशी का माहौल बढ़ गया, और ऐसी पुलकित हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी उन्हें कि जैसे चिड़िया के पंख होते हैं हल्के, उससे भी हल्का उन्हें महसूस हो रहा था, उन्हें लग रहा था वो उड़ जाएंगी खुशी की वजह से। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाही कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी खूबसूरत लम्हों के रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। अब क्या हुआ, लेखिका जो है वो हिमालय को देखकर सलामी देना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है, अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाह रही है, तो बस इतना कह पाती है मेरे नगपति मेरे विशाल, आगे बात रुक जाती है क्योंकि जो जीप थी जो चल रही थी उनकी गाड़ी भी वहीं रुक जाती है। क्यों, क्योंकि सामने एक झरना होता है जो फेन उगल रहा था, फेन यानी जिससे दूध के झाग होते हैं ना वैसे ही फेन होता है, तो पानी इतनी तेजी से और इतने स्पीड के साथ गिर रहा था कि लग रहा था कि झाग हो रहे हैं पानी में, और बहुत ही खूबसूरत झरना था जिसका नाम क्या था, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है, ये बहुत ही एक खूबसूरत झरना है बच्चों, आप इससे इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कहीं लाइब्रेरी से या इंटरनेट से पढ़कर, बहुत ही खूबसूरत झरना है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। उसके साथ ही क्या होता है, वहां फ्लैश चमकने लगते हैं यानी लोग अपने अपने कैमरे में वो फोटो खींच लेना चाहते हैं, कैमरे में कैद करने में मशगूल थे यानी कैमरे में वो फोटो खींचने में व्यस्त हो गए थे। आपको भी कोई चीज, आप कहीं घूमने जाते होंगे है ना, तो आसपास कुछ दिखता होगा अच्छा, तो आप क्या सोचते होंगे, फोटो खींच लूं, फोन में खींच लूं, कैमरे में खींच लूं, कहीं खींच लूं, लेकिन खींच लूं ताकि ये यादें हमेशा मेरे साथ रहे, है ना, ऐसा होता है ना। कोई भी अच्छी चीज जब हमें दिखती है तो हम उसका चित्र या फोटो खींच लेना चाहते हैं, वहीं वहां पे लोग उस झरने का भी फोटो खींच रहे थे। आदिम युग की किसी अभिषिक्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठे झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा ने पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अब क्या कह रही है वो, आदिम युग की यानी बहुत ही प्राचीन काल की पुराने समय की किसी अभिशप्त राजकुमारी यानी जो शापित हो, जिसे श्राप दिया गया हो, ऐसी राजकुमारी सी वो बैठ गई। क्यों, क्योंकि वो एकदम शांत चुपचाप अलग जाके बैठ गई थी कुछ पत्थरों पे, भारी भरकम पत्थर यानी जो चट्टाने जैसी होती है ना पत्थरों की, उस पे बैठ गई थी। और क्या कह रही है वो, झरने का संगीत के साथ उन्हें आत्मा का संगीत सुनाई दे रहा था, यानी जो झरने की आवाज है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उन्हें अंदर आत्मा तक महसूस हो रही थी। उसके बाद जो वहां जलधारा बह रही थी, उन्होंने उसमें थोड़ी देर पैर भिगोए। कहते हैं ना नदी ऐसी किसी जगह अगर आप पैर भिगोकर बैठते हैं तो बहुत ही ठंडक और एक अलग अनुभव होता है, आपकी सारी थकान सारी चिंताएं सब मिट जाता है, सब दूर हो जाता है। तो वैसे ही लेखिका के साथ भी हो रहा था कि वो अंदर तक अपने आप को भीगा हुआ महसूस कर रही थी, अपने आप को महसूस कर रही थी कि जो पांव उन्होंने पानी में डुबोए हैं ये इसका एहसास अंदर तक हुआ है। मन काव्यमय हो उठा था, यानी मन में लय आने लगी थी, मन किसी रचना को रच देना चाहता था, ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन्होंने सत्य, जीवन का सत्य जान लिया है, कुछ सुंदर चीज देख ली और इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, वह अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझमें जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गईं। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने के पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। आप क्या बता रही हैं, वो जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, यानी वो झरना किसका प्रतीक था, जीवन की अनंतता, यानी जीवन का कोई अंत नहीं है, जीवन की कोई सीमा नहीं है, इस बात का प्रतीक, इस बात का सूचक था वो झरना, क्योंकि वो लगातार बहता जा रहा था। और ऐसे अनोखे क्षणों में, ऐसे अनोखे पलों में लेखिका को भी एक अलग ही एहसास हो रहा था जीवन कितना शक्तिशाली है, ये एहसास हो रहा था। और उन्हें क्या लगा कि वो देश या किसी समय की सीमाओं से बहुत दूर है, कहीं बंधी हुई नहीं है बल्कि एक धारा है। जैसे नदियां होती है ना, उनपे कोई पास तो लगता नहीं कि आप इस राज्य से इस राज्य में नहीं बह सकती, इस जगह से इस समय नहीं जा सकती, या आज बह रही है तो कल नहीं बह सकती, ना तो उनके पास समय की सीमा है और ना ही देशों की। वो एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य आज भी बह रही है, कल भी बह रही है, परसों भी बहेंगी, बहती जाती है। तो ऐसा ही जो नदियों की तरह लेखिका खुद को महसूस कर रही थी कि वो भी ऐसी कोई जलधारा बन गई है और बहती जा रही है। तामसिकता और दुष्ट वासना यानी जो हमारी बुरी इच्छाएं होती है ना, वो लग रहा था कि अब सारी निर्मल यानी स्वच्छ साफ धारा में बह गई है, मेरे मन में कोई भी बुरी बुराई नहीं रह गई है, सारी बुराइयां इस निर्मल धारा में बह गई है। मैं चाह रही थी कि मैं ऐसे ही बहती रहूं, यानी उस नजारे में खोई रहूं, उस आवाज को सुनती रहूं और अपने आप को भी एक जल धारा समझती रहूं। लेकिन जितेन, जितेन कौन था, कौन था जितेन, उनका ड्राइवर कम गाइड, वो उन्हें ठेलने लगा यानी धक्के देने लगा कि चलिए उठिए, इससे भी सुंदर नजारे आगे मिलेंगे, आपको दिखाता हूं, एक ही जगह मत बैठ जाइए। अनमनी सी मैं उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले, कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य में सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो, सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। अब क्या है, वो कहती है अनमनी से उठी, यानी मन नहीं था वहां से जाने का, अनमनी यानी जब आपका किसी काम करने का मन ना हो, मन नहीं था वहां से उठने का, वहां से जाने का, पर उन्हें उठना पड़ा। जब वो जीप में बैठ के आगे बढ़ती है तो थोड़ी देर बाद उन्हें फिर उन्हें वही नजारे, यानी फिर कुछ ऐसा दिखता है जिससे मन खो जाए, आंखों को सुकून मिले, आत्मा को सुख मिले, और जैसे कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े, क्योंकि हरियाली होती है ना तो वहां ऐसा लग रहा था कि किसी ने हरे रंग का कालीन बिछा रखा है, कहीं पीले नजारे, कहीं पलस्तर उखड़ी दीवारों की तरह पथरीला, और देखते ही देखते मतलब अलग अलग तरह के दृश्य देख रहे थे और देखते ही देखते सब गायब हो जाते थे, कैसे छुमंतर, जैसे जादू में कहते ना, उस छुमंतर किया चीज सामने आ गई, छुमंतर किया चीज गायब हो गई, वैसे ही हो रहा था कि कभी इतने सुंदर नजारे आंखों के सामने आ रहे थे और कभी एकदम से वो ओझल हो जा रहे थे, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा रहा हो, वाकई में कोई जादू कर रहा हो। और फिर सब पे बादलों की मोटी चादर छा गई, यानी कि बादल आ गए थे, इतने बादल आ गए कि सारे नजारों को ढक लिया और सब कुछ बादलमय हो गया, यानी बादल ही बादल अब दिखने लगे थे। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 21। चित्रलिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अब वो क्या कह रही है, ये जो छाया और माया यानी कभी नजारे दिख रहे थे, कभी नहीं दिख रहे थे, कभी कोई चीज सामने आ रही थी, कभी गायब हो जा रही थी, ये जो अनूठा खेल प्रकृति खेल रही थी वो भर भर आंखें यानी आंखों में हर दृश्य को भर कर लेखिका उसे देख रही थी। वो हर दृश्य को देखना चाहती थी, आंखों में भर लेना चाहती थी, अपने भीतर तक उतार लेना चाहती थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे जो प्रकृति है वो उन्हें सयानी बनाना चाह रही, सयानी यानी समझदार बनाना चाह रही है, उनको ज्ञान देना चाह रही है कि जीवन रहस्य क्या है, असल में जीवन क्या है, उसको कैसे जीना है, ये सारी चीजें उन्हें बता रही थी। नए नए रहस्य राज जो किसी को नहीं पता होते वो बातें प्रकृति उन्हें समझा रही थी ताकि वो और सयानी यानी और समझदार हो जाएं। देखिए आप कि एक सिर्फ एक घूमने के जो अनुभव होता है उसको कितनी खूबसूरती से बयां किया जा सकता है, ये सिर्फ कोई लेखक लेखिका ही कर सकते हैं। हम जाते हैं है ना, हम क्या करते हैं, जाते हैं घूमते हैं और वापस आ जाते हैं। हाँ वो कुछ चीजें हमें याद रह जाती हैं कि हाँ हमने वहां पे ये यादगार चीजें की, ये वहाँ खूबसूरत चीजें देखी, इमारतें देखी, नज़ारे देखे, लेकिन इनको शब्दों में बांधना एक कला होता है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जब कहीं भी घूमने जाया करें ना तो एक आके कुछ थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ लिखने की कोशिश किया करें, है ना। इससे क्या पता कल आप में से ही कोई बहुत बड़ा राइटर बन जाए। तो इसीलिए आपको ये कलाएं आती रहनी चाहिए कि आप बहुत ही खूबसूरती से कैसे अपने शब्दों को बयां कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप ऐसे ही लिखें, आप जब कहीं भी घूम कर आए तो कहीं थोड़ी कोशिश कीजिए, एक डायरी बना लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए कि उसमें आप लिखें कि मैं यहाँ गया, इन लोगों के साथ गया था, वहां पे मैंने ये किया, मैं इतने बजे पहुंचा, ये देखकर मुझे ऐसा लगा, मतलब जो कुछ भी आपके मन में भाव आते हैं वो उसको लिखने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 पेज का सेकंड पैराग्राफ। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी, अब वहां पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई, मैंने गर्दन घुमाई, सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी कि लेखिका क्या कह रही है, ये जो धुंध की चादर यानी जो बादल बादल हर जगह आ गए थे ये अब छटने लगे थे, यानी बादल हटने लगे थे, अब वहां क्या कह रही है, पहाड़ नहीं थे बल्कि दोनों दिशाओं में विपरीत यानी उल्टी दिशाओं में छाया पहाड़ थे, यानी ऐसा लग रहा था कि किसी ने शीशा रख दिया और एक तरफ जो पहाड़ है उनकी ही इमेज, उनकी छाया, उनका रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ पड़ रहा है, दोनों पहाड़, दोनों तरफ के पहाड़ बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। और जब वो पास जाती गई जाती गई जाती गई तो थोड़ी देर में ही वो जो छाया पहाड़ थे वो अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने, यानी एकदम जो उनका आकार था बड़े थे सुंदर थे, वो उस रूप में उनके सामने आ गए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो जीप को रुकवा दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नजारे देखने के लिए आप जब कहीं घूमने जाते हैं ऐसी जगह तो जीप रोक रोक कर ही चलते हैं। ऐसे ही वहां पे भी जीप रुकवा दी गई और जैसे ही लेखिका गर्दन घुमाती है यानी यहाँ वहां देखती है तो उन्हें क्या दिखता है, चारों ओर जन्नत, यानी चारों ओर स्वर्ग जैसी खूबसूरती थी, हर जगह जहां तक आपकी नजर के छोर तक यानी जहां तक नजर जा सकती थी, जहां तक आंखें देख सकती थी, वहां तक सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिख रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति, यानी जो ये पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, फूल हैं, घाटियां हैं, वादियां हैं, ये हमें क्या अनुभव कराते हैं कि अपने आप को कैसे समर्पित किया जाता है, दूसरों के लिए कैसे दे दिया जाता है, ये अनुभव कराते हुए जो नजारे थे इतने दुर्लभ थे, दुर्लभ जो आसानी से ना मिल सके, ऐसे नजारे थे कि आपकी नजर हट ही नहीं सकती। तो वही वो बताती हैं कि वहां कहीं क्या लिखा था, थिंक ग्रीन, यानी कि हरियाली के बारे में सोचिए, हरियाली लगाए, आसपास हरियाली होना कितना जरूरी है, आवश्यक है। आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। चैरवेती चैरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके से बहता हमारा वजूद। अब क्या कह रही है वो कि उन्हें आश्चर्य हो रहा था। किस चीज का आश्चर्य? कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें एक ही पल में, छोटे से सेकंड में कितना कुछ घटित हो रहा था, नहीं कितनी सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी। सतत प्रवाहमान यानी लगातार बहने वाला झरना लगातार बह रहा था, नीचे वेग से यानी बहुत तेजी से बहती हुई तिस्ता नदी थी, सामने बादलों की धुंध उठ रही थी, ऊपर आवारा से बादल घूमते हुए लग रहे थे, है ना। मध्यम मध्यम यानी धीमी धीमी हवा में प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल हिल रहे थे। सारे नजारे इतनी खूबसूरत थे कि ऐसा लग रहा था हर चीज, प्रकृति की हर चीज अपनी तान में, अपने प्रवाह में खोई हुई है, अपनी लय में नाच रही है, अपने उसमें गा रही है, खोई हुई है, जिंदगी का मजा ले रही है, सब कुछ कर रही है। चैरवेती चैरवेती किसका संदेश दे रहे हैं? कि चलते रहो यानी कि जीवन का नाम क्या है? चलते रहना, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो रुकना नहीं है। और इसी सतत प्रवाह में, यानी जो लगातार बहती रहने वाली चीजें, हर चीज का प्रवाह, हर चीज फ्लो में जा रही थी, हर चीज चल रही थी, उसमें तिनके सा क्या बह रहा था, यानी हमारा वजूद, हमारा जो अस्तित्व कितना छोटा लग रहा था वहां पे, कि हाँ ये भी बह रहा है लेकिन ये कितनी छोटी चीज है, हमारा अस्तित्व कितनी छोटी चीज है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चालायमान सौंदर्य। क्या कह रही हैं? कि पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ कि जीवन का आनंद, जीवन की खुशी बस यही है, चलायमान सौंदर्य, जो सौंदर्य, जो खूबसूरती है, जो चलती जा रही है, बस यही, रुकना जीवन की सुंदरता नहीं हो सकती, चलते रहना ही जीवन की सुंदरता है, जीवन का असली आनंद, जीवन की खुशी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर रुक जाएंगे तो जीवन ही रुक जाएगा, और जीवन रुक गया तो क्या है बात की खूबसूरती, है ना। संपूर्णता के उन क्षणों में मैंने इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर भीतर की रेखा, भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी, सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महावाव सूखी टहनी सा टूट गया। क्या हुआ अब? वो कह रही है संपूर्णता के उन क्षणों, संपूर्णता के क्षण यानी कि वो पल जिसमें एहसास हो रहा था कि सब कुछ संपूर्ण है, सब कुछ पूरा हो गया है, वो जो उस जो पल थे जिसमें सब कुछ पूरा है ऐसा महसूस हो रहा था, उसमें जो ये खूबसूरती हर ओर बिखरी हुई थी, उसमें मन ऐसा खो रहा था और ऐसा एकात्म हो गया था कि भीतर बाहर की रेखा, यानी अंदर हम अलग हैं, बाहर हम अलग हैं, ये बाहर की नजारे अलग हैं, बाहर की चीजें अलग हैं, ये सब सीमाएं खत्म हो गई थी, प्रकृति और हमारे बीच की सीमा खत्म हो गई थी, और लेखिका जो है वो उस प्रकृति में खो गई थी। अब वो अंतर नहीं कर पा रही थी कि वो अलग है, उनकी आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है। और इसको कहते हैं आत्मा को जान लेना। जब वो आत्मा को इतना समझ गई थी, आत्मा की खिड़कियां खोल ली थी, प्रकृति के अंदर घुस गई थी, तो उन्हें क्या लग रहा था? वो ईश्वर के, परमात्मा के निकट पहुंच गई है। और इसीलिए उनके जो होठों पे दोबारा से वो प्रार्थना आने लगी जो उन्होंने सुबह सुनी थी, कि साना साना हाथ जोड़ी। सुबह उन्होंने प्रार्थना सुनी थी एक नेपाली युवती के मुंह से, साना साना हाथ जोड़ी यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मन में कोई बुराई या बुरे विहाव ना आए। वही उस समय उनके मुंह पे आ ही रही थी कि ये जो सपनों का संसार था वो खंड खंड हो गया यानी बिखर गया, और ये जो महाभाव, ये जो अनोखा भाव जो उन्हें महसूस हो रहा था, बहुत महान भाव उन्हें महसूस हो रहा था, वो सूखी टहनी की तरह अचानक से टूट गया। क्यों टूटा? देखिए, दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर, हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको, डोको होती है बड़ी टोकरी, तो डोको में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। अब क्या हुआ, वो मंत्र मुग्ध इस खूबसूरती में खो गई थी। तंद्रिल अवस्था, जैसे हल्की हल्की नींद आ रही हो ऐसी अवस्था में थी और काफी दूर निकल आई थी। तभी पाँव पर ब्रेक लगे, कैसे, वो कह रही है जैसे कोई नृत्यांगना यानी नृत्य करने वाली महिला हो और वो नाचते नाचते अपने नृत्य में इतनी खो गई हो कि अचानक उसके जो नुपुर है यानी उसकी जो पायलें हैं वो टूट जाएं। तो जैसे उसका ध्यान भंग होगा उसी तरीके से लेखिका का ध्यान भी भंग हो जाता है ना, और उसका फिर ध्यान जाता है कि क्या देख रही हूँ मैं, इतनी अद्वितीय सौंदर्य, इतनी अनोखी खूबसूरती के बीच क्या देख रही हूँ मैं कि कुछ पहाड़ी औरतें वहां पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। अब पहाड़ी औरतों की सुंदरता का देखिए लेखिका ने कैसे वर्णन किया है। गुथे आटे सी कोमल काया, यानी जब हम रोटी बनाने के लिए आटा को गूथ देते हैं तो वो कितना सफेद और चिकना हो जाता है ना एकदम, वैसे ही उनका शरीर एकदम सफेद और चिकना लग रहा था। और उनके उस खूबसूरत हाथों में क्या था, कुदाल हथौड़े, और बहुत सी महिलाओं के पीठ पर डोको यानी वो बड़ी टोकरियां होती हैं वो बंधी हुई थी जिसमें उन्होंने अपने बच्चे, अगर किसी के छोटे बच्चे हो तो आप गोद में लेके काम नहीं कर सकते इसलिए उन्होंने उस टोकरी में बच्चों को बैठा रखा था। और फिर कुदाल को जितनी ताकत थी वो भरपूर ताकत के साथ जमीन पे मार के पत्थर को तोड़ रही थी। लेकिन आखिर क्यों, अब देखिए यहाँ पे शुरू होता है कि खूबसूरती के बीच कैसे दर्द जो है वो पहाड़ों में मिला हुआ है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, वहीं पर खड़े BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है। अब वो क्या बता रही हैं कि जो इतने स्वर्ग जैसा सौंदर्य, यहाँ पे स्वर्गीय सौंदर्य यानी स्वर्ग जैसा सुंदर नजारे हैं और नदियां हैं, फूल हैं, वादियां हैं, झरने हैं, इसके बीच में ये क्या दिख रहा है कि अपनी भूख को, मौत को और दीनहीन दशा से लड़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए एक लड़ाई हो रही है। मातृत्व यानी क्योंकि बच्चे साथ में हैं तो वो ममता की भावना भी है, श्रम साधना यानी मेहनत, ये दोनों भावनाएं साथ में निभाई जा रही हैं कि जिंदा रहने के लिए लड़ाई करनी है, पेट को पालने के लिए कमाना भी है, श्रम साधना करनी यानी मेहनत भी करनी है, अब बच्चों को भी देखना है क्योंकि आप माँ हैं, तो दोनों चीजें साथ में निभाई जा रही हैं, मातृत्व और श्रम साधना। वहीं पे एक व्यक्ति खड़े थे, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कोई कर्मचारी, उनसे लेखिका ने पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 22 पर। उसने चुलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ ने चौड़ा बना रही हैं। चुहलबाजी के अंदाज में बताया यानी कि एक तीखा सा व्यंग करते हुए या मजाक करते हुए बताया कि जिन रास्तों से होते हुए आप हिम शिखर यानी बर्फ के पहाड़ों से टक्कर लेने जा रही है, यानी जो नजारे देखने जा रही हैं, जो बर्फ के सुंदर पहाड़ देखने जा रही हैं, ये जो रास्ते हैं ना, ये पहाड़ पे रास्ते इतनी आसानी से तो होते नहीं है, तो इन रास्तों को पत्थर काट काट के चौड़ा बना रही हैं ये पहाड़ ने, कैसे, अपनी मेहनत से। ये देखिए यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि जो वो कर्मचारी है BRO का, वो लेखिका को एक तरह से आप कह सकते हैं उसने तंज कसा कि बाहर के जो सैलानी आते हैं या हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो बस वहां घूम कर आ जाते हैं और वहां नजारों का मजा लेके आ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसी दुर्लभ जगहों पे आना मुमकिन कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, है ना। तो वही उसने उन्हें एहसास करवाया कि देखिए आप घूमने तो आ गई हैं यहाँ पे और घूम कर चली भी जाएंगी, लेकिन ये जानना भी जरूरी था लेखिका को कि जिन रास्तों से वो गुजर रही हैं वो रास्ते आखिर बने कैसे, और वो जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिए तो उनको अब एक अलग सी चुभन भी महसूस हो रही है कि इस खूबसूरत धरती पे सब घूम के चले जाते हैं लेकिन ये जो पहाड़ी ने स्त्रियां हैं, पहाड़ी स्त्रियां, ये कितनी मेहनत से रास्ता बना रही हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें सुविधा हो, कोई परेशानी ना हो आने जाने में, और इनका भी जो कमाई है वो चलती रहे, है ना।
बच्चों को भी साथ रख रही हैं, मेहनत भी कर रही हैं, कितनी खूबसूरत और दर्द भरी दास्तान यहाँ पे व्यक्त हो रही है। तो आगे की जो कहानी है वो अब हम अगले ऑडियो में करेंगे। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।